તારીખ 30-8-1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 40 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 697
રાજચંદ્ર વચનામૃત પાત્રતા કે ઉત્તમ પાત્રતા કે ગુણ બતાએ વિશાલ બુદ્ધિ મધ્યસ્થતા સરળતા ઓર જીતેન્દ્રિયતા જીતેન્દ્રિયતા મેં ઇતના વિસ્તાર નહીં ચલા હૈ અપના સંક્ષેપ મેં વો બાત હૈ કે જિસકો આત્મકલ્યાણ કી ભાવના હૈ સંસાર સે છૂટના હૈ ઉનકો તીવ્ર રસ વાલી વૃત્તિ કી લોલુપતા નહીં હોતી હમારે જો સામાન્ય ઉદય હૈ રોજાના ખાના પીના કપડે પહેનના ઓર શારીરિક નિત્ય કર્મ કરના ઉસમે હમારે પરિણામ રસ વાલે ચીકને પરિણામ નહીં હોને ચાહીએ ये अगर चीखने परिणाम होते हैं तो वो पात्रता में नहीं है। पात्रता वाले को सहज रूप से परिणाम रुखे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लगन है अपने आत्मकल्याण करने की, उसका झुकाव छूटने का है, और ये चीखने परिणाम रस वाले परिणाम बंधने का होता है, इसलिए वो फर्क पड़ जाता है। इसलिए उसको उत्तम पात्रता के लक्षण में यहाँ पर लिया है। अब एक मोक्षाभिलाषी जीव की परिभाषा की है कि सच्ची मोक्ष की अभिलाषा किसको होती है या मोक्षार्थी कौन होता है या खरा मुमुक्षु सच्चा मुमुक्षु कौन सा होता है। अनंत काल में आगे एक पत्र में कृपालु देव लिखते हैं कि अनंत काल में जीव को खरी मुमुक्षुता आई नहीं। एक बार जो खरी मुमुक्षुता आ जाए ना तो उसका निबेड़ा हो जाए। एक बार भी खरी मुमुक्षुता नहीं आई, मोक्ष मार्ग में तो नहीं आया है चलो, लेकिन इसकी पहले की जो भूमिका है और जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है तो कुछ न कुछ तो धर्म साधन करता ही है। आप देखिए कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो कुछ धर्म साधन नहीं करता हो, चाहे मुसलमान हो तो भी जुम्मे के जुम्मे मस्जिद में जाएगा, जुम्मा मैंने शुक्रवार को, क्रिश्चियन हो गया तो इतवार को संडे को जाएगा चर्च में। आगे तो कहते हैं कि वो कण भी कोली भी अपनी मेलडी को दूसरे को तीसरे को माता को खोड़ियार को किसी न किसी को मान लेता है। जैन संप्रदाय में भी जो भी जिस संप्रदाय में है अपने अपनी क्रिया को करता है, इसका नाम कोई पात्रता नहीं है। यानी कोई इसका नाम कोई मुमुक्षुता है वो भी नहीं है। सच्ची मुमुक्षुता का यहाँ बहुत अच्छा बात किया है कि अनंत जन्म मरण कर चुकने वाले इस आत्मा की करुणा वैसे अधिकारी को उत्पन्न होती है और वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है। ये सच्ची मुमुक्षुता की परिभाषा है कि जिसको अपने आत्मा की करुणा आई कि अरे मेरी आत्मा ने अनंत जन्म मरण किया, बहुत दुखी हुआ, अब तक अब भी वही उपाधि में ही घिरा हुआ है, अब जो है मेरे को जन्म मरण से मुक्त होना है, आत्मा की करुणा आने पर मुक्त होने की अभिलाषा होवे, वही सच्चा मुमुक्षु है, वही सच्चा मोक्षाभिलाषी है, वही मोक्षार्थी है। समय सार की 17-18 गाथा में भी ऐसे मोक्षार्थी को ही स्थान दिया है कि वो भेद ज्ञान करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है। जो मोक्षार्थी नहीं होता वो भेद ज्ञान करने के लिए योग्य नहीं होता, क्षमतावान नहीं होता और उसका मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होता। इसलिए नीम की जो बात है वो यहाँ पर है और हमको ये तलाश करना है, वो चेक कर लेना है कि हमको हमारी आत्मा पर करुणा आई है कि नहीं आई है, या हम इस विषय में उपेक्षित है, उदासीन है, ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुभाग मनुष्य को ये बात सुनने भी नहीं मिलती। जो सुनने को नहीं मिलती वो विचार में कैसे लें और प्रयोग में कैसे लें। और सुनने पर भी अगर हम उपाय उपेक्षा करते हैं, उदासीन रहते हैं, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, तो बहुत बड़ी खेद की बात है। तो कहते हैं कि ऐसे वैसे अधिकारी जीव को अपने आत्मा की करुणा आती है और भगवान उसको ही मोक्षाभिलाषी कहते हैं। वही पुरुष ऐसा आत्मा ही यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में समझता है। पदार्थ मैंने कोई भी बात हो, अनेक उदय प्रसंग बनते हैं, अनेक प्रकार के जीव के उदय भाव चलते हैं, उसका प्रकार बहुत है। सभी को सभी प्रकार में परमार्थ निकालना, सब में से परमार्थ निकालना, आत्मकल्याण का रास्ता निकालना, ऐसी समझ, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी सूझ, अंतर सूझ किसको आती है कि जिसको अपनी आत्मा की करुणा आई उसको आती है, जो मोक्षाभिलाषी होता है उसको आती है। क्यों? कि जो मोक्षाभिलाषी है उनको तो छूटना ही है, एक ही बात पकड़ करके बैठ गया है कि मुझे छूटना है, बस मुझे छूटना है। तो जहां जहां वो उदय में बंधता है, जहां भी उसके बंध के परिणाम होते हैं, खास करके रस के और चिकने जो होते हैं, वो जो भी होते हैं, उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो भावना है मुक्त होने की, उनको ठेस पहुंचती है। उसको क्यों सुझाती है? उनको सुझाने का कारण क्या है, ये समझ आने का क्या कारण है इसको, कि इनकी जो भावना हुई कि मुझे इस संसार से उड़ जाना है, अब इस संसार में मुझे नहीं भटकना है, ये जो इसकी अंतर भावना है वो भावना हमेशा कोमल होती है। भावना कोमल होती है, पर उस कोमल भावना के विरुद्ध अपने ही खुद के परिणाम जब होते हैं तो उसकी कोमलता को ठेस पहुंचती है। वो ठेस पहुंचती है इसलिए पता चल जाता है, जैसे चलते चलते ठेस आती है तो पता चलता है कि हमारा ध्यान नहीं रास्ते पे, हमारा ध्यान नहीं तब तो ठेस आई ना, ठेस कब आई, वो अलर्ट हो जाता है, ये नहीं चले हमको, ये नहीं चले हमको, मुक्त होना है, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा रोई है, बहुत रोई है, रोई है मतलब बहुत रोई है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो पदार्थ को यथार्थ समझता है और मुक्त होने के पुरुषार्थ में वो लग जाता है। चाहे उसको योजना समझाई नहीं हो, मुक्त होने की योजना बताई नहीं हो, तो भी उसकी उसका प्रवेश उस योजना में सहज होता है और सहज वो योजना अनुसार ही उनके परिणाम ऑटोमेटिक स्वतः आगे बढ़ता रहता है। जरूरी नहीं कि उसको स्पष्ट रूप से योजना बता दी गई हो, वो कोई जरूरी नहीं, और बताई हो इसलिए कोई चल सकता है ऐसी भी बात नहीं है, और नहीं बताई है इसलिए उसके योजना में उसका चलना नहीं होगा सो बात भी नहीं है। सहज वो अपने मुक्त होने के में पुरुषार्थ में ही लगा रहता है, लग जाता है। जो आत्मा मुक्त हुए हैं वे आत्मा कुछ स्वसंद वर्तन से मुक्त नहीं हुए हैं, परंतु आप तो पुरुष द्वारा उपदिष्ट मार्ग के प्रबल अवलंबन से मुक्त हुए हैं, और मुक्त होने वाले को पहला विचार, फर्स्ट थॉट जिसको कहने में आता है, वही आता है कि मैं अनजाना हूं, मैं मार्ग को जानता नहीं, मैं उपाय को इलाज को जानता नहीं। जो इसके जानकार है उसी के अनुशासन में मुझे चलना होगा अगर मुझे मुक्त होना है तो, ये उनको सबसे पहला विचार आता है, आई जाता है कि मुक्त होने की सही भावना में से ये विचार का उद्भव होता है। सही भावना होती है तो ये विचार का उद्भव होता है, और विचार ही होता है नहीं, वो वैसे ही चलता है, क्योंकि वैसा नहीं चलना उसका नाम ही स्वच्छंद है। परिभ्रमण के मुख्य कारण दो है, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। जो स्वच्छंद है वो सबसे बड़ा दोष है, स्वच्छंद है वो सबसे बड़ा दोष है, और प्रतिबंध भी स्वच्छंद पूर्वक ही होता है। जिसको स्वच्छंद नहीं करना है वो प्रतिबंध को छोड़ देगा, चारों प्रतिबंध है उसको छोड़ेगा वो, जो स्वच्छंद को छोड़ेगा वो। स्वच्छंद रहे और प्रतिबंध से मुक्त हो गए वो तो बनेगा ही नहीं। इसलिए परिभ्रमण के अपराध में स्वच्छंद सबसे बड़ा अपराध है, और ये स्वच्छंद से मुक्त हुए बिना कोई आत्मा की मुक्ति हुई भी नहीं है। क्या कहते हैं कि जो आत्मा मुक्त हुए हैं वे आत्मा कुछ स्वच्छंद वर्तन से मुक्त नहीं हुए हैं। जब अनादि स्वच्छंद छोड़ दिया तभी मुक्त हुए हैं, स्वच्छंद रखकर कोई मुक्त हुए हैं ऐसा एक भी केस नहीं है। इसलिए ज्ञानी के मार्ग में, ज्ञानी की आज्ञा में तो आना ही पड़ेगा। आ जाए, कल आए, लाख साल बाद आए, या लाख भव के बाद आए, अनंत भव के बाद आए, इसके सिवा तो कोई इलाज है ही नहीं। अनादि काल के महाशत्रु रूप राग द्वेष और मोह के बंधन में वह अपने संबंध में विचार नहीं कर सका। क्या हुआ, जो जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है तो उसको उस राग द्वेष और मोह के बंधन में ऐसा पड़ा है, और ऐसा बंधन में बंधा हुआ है, उसके भाव ही बंध गए इसमें, इससे आगे कोई बात होती नहीं। राग द्वेष और मोह, राग द्वेष और मोह को अपने संबंध में विचार नहीं कर सका, अपना आत्महित का विचार वो नहीं कर सका है। मनुष्यत्व, आर्य देश, उत्तम कुल और शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन है, अपेक्षित माने मर्यादित साधन है, हुए तो अच्छी बात है। आर्य देश होना, मनुष्यपना होना, पहले तो चार गति में ये दुर्लभ चीज है। मनुष्यपना बहुत बहुत दुर्लभ है। काकतालीय न्याय से हमें प्राप्त हो गया है। काकतालीय न्याय समझते हैं, काग को बैठना और डाल को पढ़ना। कोई कौवा के भार से पेड़ की डाली बड़ी गिर जाए, पड़ जाए, ऐसा तो बनता नहीं, लेकिन खुद ही सड़ गई है और कौवा बैठा बैठा तो थोड़ी हिलने लगी, तो खुद का ही भार से वो गिर गई। कोई कौवा के भार से नहीं गिरी है, लेकिन झुलने में हिलने में वो निमित हो गया। बाकी कोई कौवा के भार से पेड़ की डाली तो नहीं पड़ती। ऐसे मनुष्यत्व भी कोई वैसे ही मिल गया है हम लोगों को। अब इसका पूरा पूरा हमको लाभ उठा लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य वो है कि मनुष्य भव मिलता नहीं और हमको तो मिल गया है। अगर हमको मनुष्य भव मिला है तो हमको हमारे अनुकूल संयोग बनाने में या वृद्धि करने में या सुरक्षित रखने में हमारा जीवन का खर्चा या जीवन को खो देना नहीं चाहिए, न जीवन को खर्च कर देना चाहिए, न जीवन को खो देना चाहिए। ऐसा मौका अनंत काल में कभी ही मिलता है। आर्य देश, हम आर्य देश में हैं, जहाँ ऐसा सत्संग की उपलब्धि है, ऐसे देश में है। हमारे देश के कई लोग आज विदेश में जाकर बसे हैं, कभी उन लोगों से मिलना होता है तो कहते कि यहाँ ये चीज है ही नहीं, वहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, क्या करें, रोजी रोटी के लिए इधर आ गए मैंने फंस गए, अब यहाँ तो कोई सत्संग मिलता नहीं, ये बात सुनने को मिलती नहीं। परिणाम सारे दिन संसार के कार्य में लग जाते हैं, लगे रहते हैं और आयु चला जा रहा है, ये हालत है। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस देश में है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मनुष्य है और इस देश में है, उत्तम कुल में है, जैन कुल है, ये सर्वोत्तम है। लोग में ब्राह्मण को सर्वोत्तम बोला है, लेकिन वो लोग तो रूढ़िगत रूप से ब्राह्मण है, जो ब्रह्म में स्थित रहते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं, और पहले ब्राह्मण तो उनको बोला गया। ऋषभदेव भगवान ने ब्राह्मण का एक अलग स्थान बनाया, वो ब्रह्म में रहने वाले थे, फिर ये लोट मांगने लग गए, फिर पीछे से ये बात हो गया। आटा मांगने के लिए निकलते हैं ना, वो बात पीछे से हो गई। पहले तो वो लोग निवृत्त हो जाते थे, आत्म कल्याण के लिए निवृत्त हो जाते थे, तो लोग उनको खिलाते पिलाते थे, क्योंकि वो कोई अपने रोजगारी के लिए कुछ कोई काम नहीं करते थे, एक ब्रह्म में रहने का ही, आत्मा में रहने का ही काम करते थे, तो दूसरे लोग उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। उसमें से फिर वो ख्याल रखने वाले कम हो गए तो वो मांगने को लग गए, ये बात ऐसे चल गई और वो परंपरा में बात दूसरी हो गई पूरी। ये सर्वोत्तम कुल है, वो जैन में से हुए हैं, मूल जैन में से हैं वो लोग। वो लोग विद्वान होते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं, ब्रह्म में रहने वाले, आत्मा में रहने वाले होते हैं। आजकल वो बात नहीं रही, आज तो जैन में भी नामधारी होते हैं और क्या होते हैं। कहते हैं कि उत्तम कुल का होना ये भी एक सौभाग्य है, क्योंकि वहीं उत्तम शिक्षा और उत्तम उपदेश मिलने का मौका होता है, और जगह बात होती नहीं है। उत्तम कुल के सिवाय ये बात सुनने को पढ़ने को भी नहीं मिलेगी। देखिए आप चाहिए कहीं भी प्रत्यक्ष कर लीजिए परिस्थिति को, नहीं मिलेगी, सुनने ही मिलेगी। और शारीरिक संपत्ति, हमको व्याधि में परिणाम व्याधि से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य सामान्य रूप से इतना कमजोर है कि शरीर में व्याधि होते ही उपयोग वहीं लगा रहता है, फिर आत्मकल्याण का विचार करे कैसे? वो तो रोग को दूर करने से उसका लक्ष्य ही बदलेगा नहीं। ये मिटे तो अच्छा, ये मिटे तो अच्छा, ये मिट जाए तो अच्छा, वही बात रहेगी। जिसको शारीरिक संपत्ति मैंने शारीरिक तंदुरुस्ती ठीक है, उनको वो विकल्प नहीं रहता। साता का उदय रहता है तो विकल्प नहीं रहता। तो यहाँ कहते हैं कि वो साता का उदय तुमको चल रहा हो तो, जितने पैमाने में, पूरी साता तो आजकल मिलना मुश्किल है, लेकिन जितने प्रमाण में मिलती है इसका तुम मौका, उस मौके का तुम लाभ उठा लो। जब भी तुम्हारा उपयोग शरीर के प्रति नहीं लगा हो, तब तुम आत्मा में उपयोग लगाने के उपाय में लग जाओ। ये भी एक अच्छा मौका है। ये अपेक्षित मैंने मर्यादित साधन है, क्योंकि ऐसा सब बात मिलने पर भी लोग आत्मकल्याण नहीं कर पाते, और नहीं करते भी है, नहीं कर सकते। देखिए एक अपन व्यंगावलोकन करते हैं कि हिंदुस्तान में, बाहर की बात तो छोड़ो, वहाँ तो कोई चीज़ है नहीं, जब हिंदुस्तान में ये चीज़ है, सारे हिंदुस्तान में जैन धर्म और जैन तीर्थ और जैन मंदिर और जैन शास्त्र फैले हुए हैं पूरे क्षेत्र में, 95% 95% से ज़्यादा लोग पेट भरने के पीछे लग गए हैं। सुबह से शाम तक आजीविका कैसे चलाने, प्रतिकूलता को कैसे हटाना, अनुकूलताओं को कैसे जुटाना, बस इसके पीछे 95% से लोग तो आर्थिक प्रयोजन के पीछे पूरा दिन रात लगे हुए रहते हैं, इनके दूसरे विचार भी नहीं आते। 5% से कम लोग संपत्ति वाले हैं, जिसको उपाधि नहीं है कमाने के, पैसे कमाने की उपाधि नहीं है, वैसे ही उसकी आमदनी बहुत है। उसमें बहुभाग लोग, वो 5% में से 90% उसके सुरक्षा करना संपत्ति की, उसको कम नहीं होने देना, बड़े नहीं तो ठीक है, बड़े तो अच्छी बात है, वरना घटना तो नहीं चाहिए, और भोग उपभोग के पीछे जीवन व्यतीत कर लेते हैं। बहुत कम लोग, कुछ एक लोग आत्मकल्याण का विचार करते हैं। उसमें ऐसी बात नहीं है कि वो 5% में से ही करते हैं, करने वाले तो 95% में से भी निकल सकते हैं। जिसको करना है, आत्मकल्याण करना है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता को कभी गिनता नहीं है, और गिनने वाले को आत्मकल्याण होने का कोई अवसर नहीं है, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ये मर्यादित साधन है, और अंतरंग साधन यानी मुख्य साधन, खास साधन मात्र मुक्त होने की सच्ची अभिलाषा है। अभिलाषा नहीं लिया, खरी सच्ची अभिलाषा यानी ईमानदारी से मुक्त होना है, उसकी बात है। अंतर में तो संसार प्रिय लगे,
और बाहर में धर्म के क्षेत्र में आए तो मुक्त होने के लिए अपनी भावना को व्यक्त करें, हमको भी मुक्त होना है, हमको भी मुक्त होना है, हम भी मुक्त होना चाहते हैं, वो सच्ची अभिलाषा है ही नहीं, वो सच्ची अभिलाषा नहीं है। सच्ची अभिलाषा होवे और मुक्त नहीं होवे वो बात बनने वाली है ही नहीं। अभिलाषा सच्ची चाहिए। इस प्रकार यदि आत्मा में सुलभ बोधिता की योग्यता आई हो तो वह जो पुरुष मुक्त हुए हैं अथवा वर्तमान में मुक्त रूप से या आत्मज्ञान दशा से विचरते हैं उनके उपदिष्ट मार्ग में निसंदेह श्रद्धाशील होगा। क्या कहते हैं? इस प्रकार मैंने सच्ची मुक्त होने की अभिलाषा वाला का प्रकार, उसको कहते हैं इस प्रकार। इस प्रकार होने से क्या होगा? सुलभ बोधिपणा आएगा। सुलभ बोधिपणा किसको कहते हैं? कि आत्मकल्याण का बोध जिसको बहुत बहुत सहज मात्र में असर करता होता है। क्या होता है? कि आत्मकल्याण का बोध भारत वर्ष में अभी इस देश में से बिल्कुल नाश नहीं हुआ है, कहीं न कहीं तो चलता है, सर्वत्र भले ही नहीं चलता है लेकिन तो कहीं न कहीं तो चलता ही है। उसका प्राप्त होना, उसका योग होना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की पुण्य की बात है, बहुत बड़ा शुभ कर्म के उदय से ऐसा होता है। ऐसा उदय भी कुछ एक लोगों को होता है, उनमें से सुनने को तो मिलता है लेकिन असर सबको नहीं होती है। क्या होता है? सबको असर नहीं होती है, कुछ एक को असर होती है, कुछ एक को असर नहीं होती है। अब किसको असर होती है? कि जिसको मुक्त होने की सच्ची अभिलाषा है उसको असर होती है। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि ये जो गाय का बछड़ा होता है उनको बांध रखना पड़ता है। दो कारण है कि बार बार वो गाय को दूध पी लेता है तो शाम को दूध मिलता नहीं गाय पालने वाले को, जितना चाहिए उतना, एक बात तो वो है। दूसरा तूफान भी करता है क्योंकि उसमें नया लोई है तो इधर उधर दौड़ता फिरता है तो घर में जो छोटी मोटी चीज़ है उसको बिगाड़ता है, तोड़ता है, फोड़ता है, तो उसको बांध कर रखना पड़ता है। तो आ गया बंधन में, बंधन में रहा सारे दिन। शाम को जब दूध दोने का टाइम होता है उसको छोड़ते हैं, पहले उसको दूध पिलाते हैं। इसका कारण है कि गाय का वात्सल्य अपने बछड़े पे होता है तो उसके स्तन में बहुत दूध आने लगता है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है, वो फीलिंग से उसका संबंध है। जैसे मनुष्य में भी बच्चा पैदा होते ही बाद में दूध आता है माता के स्तन में, उस प्रकार से तो वहाँ भी ऐसा एक फीलिंग के कारण से गाय को एकदम आव में दूध। कि जब उसकी डोरी छोड़ते हैं वो चारों पैर से कूदने लगता है, एक सेकंड जमीन पर पैर नहीं रखता, वो इतना कूदने लगता है। अभी डोरी छोड़ने की बात चली है, उसको मालूम हो गया कि टाइम हो गया और कोई उसके खिले के पास छोड़ने को जाता है, बहुत उछल कूद करने लगता है, बहुत कूदता है। क्यों?
बंधन से छूटने का उमंग है वो क्या है, बंधन से छूटने का उमंग। तिर्यंच प्राणी को भी जो 15 दिन महीना भर का है, उम्र कितनी है, महीना भर की होगी, उछल कूद करता है, उतने सेंस उसमें भी है, तिर्यंच में भी है। और तुम्हारी आत्मा अनादिकाल से बंधन में है, ये तीर्थंकरों की बात मुक्त होने की चल रही है और तुम्हारी आत्मा के में उछल कूद नहीं होती है, क्या बात है, तुम तो बछड़े में से भी गए बीते हो। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, इतना उत्साह आना चाहिए। अपनी मुक्त होने की बात सुन करके रोम रोम में रोमांचित हो जाना चाहिए, ऐसी रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज सुनने को मिलता है तो ऐसे बस नीचे बैठकर सुन जाए, सुनते रहे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उल्लासित वृत्ति से मेरी मुक्त होने की बात हो रही है, इस तरह से रोमांच होना चाहिए। तो कहते हैं कि उस परिस्थिति में सुलभ बोधिता प्राप्त होती है। सुलभ बुद्धिपना कब आता है, कि अपने मुक्त होने के विषय में जिसको उमंग है, उत्साह है, रस है, रुचि है, भावना है, तब तो उनको बोध की असर पहुंचती है, वरना बोध की असर नहीं पहुंचती। वो दुर्लभ बुद्धिपना है। दो प्रकार के जीव होते हैं, बोध प्राप्त जिसको होते हैं उसमें दो प्रकार के जीव होते हैं, एक सुलभ बोधि और एक दुर्लभ बोधि। तो प्राप्त बोध की भी उसको असर नहीं पहुंचती है, वो दुर्लभ बोधि जीव है, उनको मुक्त होने में बहुत दूरी है और वो सच्चा मोक्षाभिलाषी नहीं है। क्या कहते हैं, इस प्रकार यदि आत्मा में सुलभ बुद्धिता की योग्यता आई हो तो वह पुरुष मुक्त हुए हैं भूतकाल में अथवा वर्तमान में मुक्त रूप से, मुक्त रूप से यानी आत्मज्ञान दशा में विचरते हैं, उनके उपदिष्ट मार्ग में निसंदेह श्रद्धाशील होगा। उनको ये सुलभ बुद्धि तो उनकी श्रद्धा जमेगी, वहां उनको ये पक्का हो जाएगा कि ये यही मार्ग है और ये एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। वो श्रद्धाशील हो जाएगा, उसका विश्वास जमेगा और वो कभी मार्ग को किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, हर हालत में वो मार्ग को नहीं छोड़ेगा। जिसमें राग द्वेष और मोह नहीं है, वह पुरुष इन तीन दोषों से रहित मार्ग का उपदेश कर सकता है अथवा तो उसी पद्धति से निसंदेह रूप से आचरण करने वाले सत्पुरुष उस मार्ग का उपदेश दे सकते हैं। तो उपदेश कौन दे सकते हैं, कि जिसमें खुद में ही वही दोष है, जिसने दर्शन मोह को मिटाए नहीं और दर्शन मोह पूर्वक के राग द्वेष को मिटाए नहीं, वो तो उपदेश के अधिकारी नहीं है। कोई उपदेश दे सकते हैं, फिर वो सत्पुरुष हो, मुनि हो या सर्वज्ञ हो, तीन है, सजीवन मूर्ति तीन ही होते हैं। कोई तीन दोषों से रहित मार्ग का उपदेश कर सकता है, क्यों, कि उनको इन बात उन लोगों को ही इस बात में रस है और उनका अंतर पुरुषार्थ चलता है, तो इनकी वाणी में ये फोर्स आता है या इनकी वाणी में ऐसा टोन आता है, अंतर ध्वनि अंडरटोन उसकी बात में आता है, दूसरे को नहीं आता है। इसलिए अपना रस के कारण से दूसरे को रस उत्पन्न होने में वो निमित्त होते हैं। खुद को रस नहीं हुए तो दूसरे को रस उत्पन्न होने में निमित्त हो सकते हैं नहीं है। एक निमित नैमितिक संबंध के विश्व में व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था का विभाग है निमित नैमितिक संबंध का। काम अपने उपादान से होता है, अपनी शक्ति से होता है, परंतु निमित नैमित संबंध की भी एक व्यवस्था है विश्व में। तो जिसको ये रस उत्पन्न होता है, अध्यात्म रस वाले ही आत्म रस में आते हैं, अध्यात्म रस में आते हैं, चैतन्य रस में आते हैं, और वही दूसरे को ऐसा रस उत्पन्न होने में निमित्त बन सकते हैं, दूसरे बन सकते हैं नहीं है। अथवा तो उसी पद्धति से निसंदेह रूप से आचरण करने वाले, यानी उसमें निसंदेह हो गया हो, उसी कार्य पद्धति में जो आने के लिए योग्य हो गया हो, तैयार हो गया हो, वही उपदेश करने के वैसे करने वाले सत्पुरुष, आचरण करने वाले सत्पुरुष उस मार्ग का उपदेश दे सकते हैं। एक ही बात है, अध्यात्म रस को हो या आत्म रस को हो, एक ही बात है, चैतन्य रस को हो या अमृत रस को हो, सब एक ही बात है। क्योंकि वो इतना सुहावना होता है, इतना मीठा होता है, उतना शांत रस भरपूर होता है। सभी दर्शनों की शैली का विचार करने पर राग द्वेष और मोह रहित पुरुष का उपदिष्ट निर्ग्रंथ दर्शन विशेष मानने योग्य है। क्या कहते हैं? सभी दर्शनों की शैली का विचार करने पर, देखो ये 21 साल की उम्र में वो लिख रहे हैं, 21 साल की उम्र में स्वयं ने विश्व के प्रमुख जो दर्शन है, धर्म संप्रदाय है, उनकी शैली का अभ्यास कर लिया था। बहुत तगड़ा क्षोभ लेकर आए थे और विश्व में जो भी धर्म चल रहे हैं उनकी शैली का विचार कर लिया और टोटल निकाल लिया। क्या निकाला? कि राग द्वेष और मोह रहित पुरुष का उपदिष्ट ऐसा निर्ग्रंथ दर्शन वही विशेष रूप से मानने योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा नंबर वेदांत का आता है, बाकी सब तत्वज्ञान के विषय में तो बहुत निचली स्थिति में, नीचे की स्थिति में है। वेदांत वालों ने काफी जैन दर्शन में से ग्रहण की है बातों को, लेकिन जो निग्रंथ दर्शन है इनकी बराबरी में कोई नहीं है। ये टोटल उन्होंने निकाला था, कुल धर्म से वो दिगंबर नहीं थे। माताजी स्थानकवासी थे शायद, पिताजी वैष्णव थे, और बचपन में वैष्णव धर्म की कंठी भी बांधी थी छोटी उम्र बचपन में, इस फिर भी कुल धर्म का आग्रह नहीं था। सभी दर्शनों का अभ्यास किया, विचार किया और मानने योग्य एक ही दर्शन है ऐसा टोटल निकाला, ऐसा तात्पर्य निकाल दिया 21 साल की उम्र। देखो ये कौन कर सकता है ऐसा निर्णय, ऐसा निर्धार, ऐसा निश्चय कौन कर सकता है? जिसकी तुलनात्मक बुद्धि है वही कर सकता है। कौन कर सकता है? तुलनात्मक बुद्धि से। क्यों? कि किसी धर्म में कोई बुरी बात नहीं कही जाती,
चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, जिसमें फिलोसॉफी बहुत नाम मात्र है, बहुत कम है। जैन दर्शन के हिसाब से तो हजारवा भाग भी नहीं है, फिर भी कोई बुरी बात नहीं करेंगे। बात तो अच्छी अच्छी आएगी, क्योंकि धर्म का क्षेत्र है ना, कोई संसार का पाप करने का तो क्षेत्र है ही नहीं। तो अच्छी बात आती है, हमारे धर्म में भी अच्छी आती है, हमारे धर्म में भी अच्छी बात है, हमारे धर्म में ऐसे ही चलते हैं सब लोग। सामान्य बुद्धि वाले तो ऐसे ही चलते हैं, और पूर्व कर्म से पक्षपात रहता है अपने अपने संप्रदाय का। ये भी एक बड़ी आपत्ति है जो खुद ने ही खड़ी की है, निकलना मुश्किल होता है। सारा सार का विचार करने वाले तुलनात्मक मैंने तोलन करना, एक पल्ले में इधर रख उसको रखना, दूसरे पल्ले में सामने वाले को रखना, फिर कौन सी चीज बढ़िया है, उसने तुलनात्मक बुद्धि से विचार तोल करके विचार करना। ऐसी जिसकी बुद्धि होती है वही अपने संप्रदाय से बाहर निकल सकता है। मेरा संप्रदाय इसलिए सब बात अच्छी, वो बात नहीं है। मेरा है इसलिए अच्छा है, वो बात नहीं है। हमको तो अच्छा है, उसको ही मेरा बनाना है, उसको ही अपना बनाना है। इस ध्येय से जो देखता है वो सही तुलना करके जैन दर्शन में आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए आए बिना रहेगा नहीं कि दूसरों में और जैन दर्शन के व्यवहार में भी बहुत बड़ा अंतर है। निश्चय में तो है ही, लेकिन वो तो गहराई में जाए तब की बात है, क्योंकि निश्चय का विषय बहुत गहरा है। लेकिन जो ऊपरी ऊपरी बात है, जो व्यवहारिक बात है, उसमें भी जैन दर्शन में जो व्यवहार है वो व्यवहार कहीं और जगह दिखने में नहीं आता। इतना अच्छा व्यवहार है, चाहे श्रावक का हो चाहे साधु का हो, दोनों का व्यवहार इतना बढ़िया है। हम हमारे बचपन का कोई स्मरण करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे घर में सीढ़ी थी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो सीढ़ी थी, उसके नीचे उस टाइम में जलाने के लिए लकड़े और गोबर के छाने स्टोर किए जाते थे, क्योंकि गीले होते हैं तो अच्छा जलते नहीं, तो जो सूखे सूखे उसको स्टोर करते थे और उसको जलाने में लेते थे। फिर हम कभी कोई जैन घर में गए, जैन के घर में गए, तो वहाँ भी गांव में तो यही पद्धति होती है, जो हमारे घर में थे वो उनके घर में थे। वो लोग क्या करते थे कि जो छाना है उसको ऐसे 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 करके पहले ठपकारते थे, तो छोटे मोटे जीव उसमें पैदा होते हैं और गीले होते हैं वहाँ तक तो होते ही हैं, बाद में कीड़ी मकोड़े भी चढ़ते थे, दूसरे भी जीव होते हैं, मच्छर वगैरह डांस वगैरह तो उनके खुराक है, तो उनको पहले निकाल लेते हैं फिर जलाते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, हमको मालूम हुआ, अरे ये लोग कितने दरकार करते हैं, अगर दूसरे जीव मर जाते हैं, मर जाएंगे, इसकी दरकार करते हैं। तो उस तरह से छोटी मोटी बात में जो व्यवहार होता है, खाने में पीने में कोई वस्तु रखने में प्रयोग करने में, जो जैन दर्शन में जो जैन कुल में जो श्रावक का और साधु का व्यवहार है, और कहीं जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। मिच्छा में दुकड़म का व्यवहार वो उन्हें तो बहुत 19-20 साल की उम्र में मालूम हुआ। बम्बई में हम जहाँ सर्विस करते थे वहाँ एक डेरावासी पताम्बर था हमारे स्टाफ में, तो जब वो समस्त्री का दिन आया तो वैसे तो आपस में कुछ कम बनता था, क्योंकि वो तो सीनियोरिटी का बात होता है कि जो जूनियर आदमी सीनियर हो जाता है और सीनियर से भी आगे काम करता है तो जलन होता ही, ईर्ष्या हो ही जाती है, तो आपस में तो कुछ कम बनता था। फिर भी उन्होंने एक दिन क्षमा मांग ली तो हम चौंक गए। अच्छा, ये बहुत अच्छा व्यवहार है, हमारे संप्रदाय में वो बात नहीं है। साल में एक दफे, पूरी साल में जितना भी आपस में व्यवहार हुआ हो, मन से, वचन से, काया से, कृतकारित अनुमोदना से आपको दुख पहुंचा हो, मैं क्षमा कर मांग लेता हूँ, मेरी ओर से क्षमा मांग लेता हूँ, हल्का हो जाता है। अगर अंतर से कोई क्षमा की प्रार्थना करता है तो हल्का हो ही जाता है। ये शल्य निकालने की बात है। क्या है शल्य निकालना? आसान नहीं है। किसी ने किसी से कोई प्रसंग बन जाता है और शल्य अंदर में घुस जाता है, निकलता नहीं। लेकिन जो क्षमा मांगता है अंतर से, दिल से, तो उसका शल्य निकल जाता है। मैं वैरम मज्जन केणी, मेरे को किसी के साथ वैर नहीं है, मैं सब दुनिया के सभी जीवों के साथ, जाने में अनजाने में, कहीं भी मेरे से किसी को दुख पहुंचा हो, मेरी वैर वृत्ति नहीं रखना है, मेरे को वैर वृत्ति नहीं रखनी है, क्योंकि इसका नुकसान मुझे है। निकाल देता है, शल्य निकल जाता है। वो फर्स्ट टाइम 19 साल की उम्र में, उस वक्त तो वो कोई बात थी नहीं हमारे सामने, लेकिन हमको चौंट लगती थी, ऐसा व्यवहार कहीं देखा नहीं है, असर करेगी बात तो, मिच्छा में दुकड़म किया लेकिन हमको असर होगी, बात तो कोई बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, इसका आदर हो गया कि इसका ऐसा होना ही चाहिए। तो ऐसे जो कहीं बातें होती है, वो जैन दर्शन को अपना जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वो बात छिपी नहीं रहती, वो बात छिपी नहीं रहती, और तुलना करने वाले को तो छिपी रहेगी ही नहीं। वो तो अभी तुलना नहीं करते थे तब भी वो बात समझ में आती थी, तुलना करने से तो वो बात बहुत आसानी से समझ में आई जाती है कि जिसको संपूर्ण निर्दोष होना हो, इनके लिए निर्ग्रंथ दर्शन जैसा कोई दर्शन विश्व में है ही नहीं। क्यों? कि मुमुक्षुता की शुरुआती वहां से होती है, संपूर्ण निर्दोषता के लक्ष्य से, पूर्णता के ध्येय से ही वहां से शुरुआत होती है। ये तो नींव की बात हुई, संपूर्ण निर्दोष होने का एक महल है 14 गुण स्थान से ऊपर सिद्धालय 15वां स्थान है। वो 15 मजला का महल के शिलान्यास यहां से होता है, मुमुक्षुता में शिलान्यास होता है ना, तब उत्सव किया जाता है, खात मुहूर्त उसको बोलते हैं, उसका भी मुहूर्त निकालने में आता है। क्यों? वो नींव की बात है, उस पर सारा मकान का आधार है। ऐसे ये पूर्णता का जो लक्ष्य है वही सिद्ध पद का मंगल शिलान्यास है। वो नींव इतनी मजबूत होती है तब तो सिद्ध सिद्धालय में जाता है जी, इसके सिवा नहीं जाता। तो कहते हैं कि सभी दर्शनों की शैली का विचार करने पर राग द्वेष और मोह रहित पुरुष का उपदिष्ट जो निर्ग्रंथ दर्शन है वो विशेष मैंने खास मानने योग्य है, वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्कृष्ट है, उसमें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सिद्ध ही है, इसकी उच्चता जो है वो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। पंच महाव्रत का जितना भी समिति गुप्ति 28 मूल गुण है, किसी भी संप्रदाय के साधु में ये व्यवहार नहीं है, जिसका व्यवहार इतना साफ सुथरा है, उसका निश्चय इससे बढ़िया है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो इससे आगे की बात है, उसका तो लेवल ही और है कि जिस लेवल पे खड़े रहने से ऐसे व्यवहार का भी निषेध होता है। पंचाध्यायी में शास्त्रकर्ता ने निश्चय की परिभाषा ऐसी की है। कैसी की? कि जो व्यवहार का निषेध करे इसका नाम निश्चय। कौन सा व्यवहार? जो जिनोक्त व्यवहार है उसका। देखो क्या लेवल बदल गया है। जैसे सुगानी जी पत्र में अभी पढ़ा, जब पर्यूषण पूरा होता है, संवत्सरी का दिन आता है, आखिरी दिन में सब अपने एक दूसरे से मिल करके मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं, तो लिखते हैं कि हमने दोष कभी किए ही नहीं। क्या? हमारा जो मूल स्वरूप है, निश्चय स्वरूप, उसमें तो दोष हुआ ही नहीं और हमने किया ही नहीं, वही हमारा स्वरूप है, हमने किया ही नहीं। ऐसे स्वरूप की दृष्टि में क्षमा मांगने का शुभ भाव भी एक दोष है और निषेध करने योग्य है। वो भी एक दोष है। निश्चय की तो ऐसी बात है, तो जिसका व्यवहार इतना बड़ा ऊंचा है, इसका निश्चय तो इससे भी बहुत बड़ा ऊंचा है, इसका तो लेवल ही कुछ और है, ऐसी बात है। ऐसा जो निर्ग्रंथ दर्शन है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये बात है उसमें। ये जो निश्चय है वही निर्ग्रंथ दर्शन का क्रीम है, मक्खन वहां है। आनंद घन जी लिखते हैं कि मक्खन था सो विरला खाया, छासे जग भरमाया है। अब जो नट नागर की बाजी, क्या जाने ब्राह्मण काजी। ब्राह्मण मैंने हिंदू और काजी मैंने मुसलमान, वो क्या जाने इसको। जैन दर्शन को वो लोग नहीं समझ सकते। मक्खन था सो विरला खाया, निश्चय तक पहुंचे वो तो विरल जीव है, बाकी तो व्यवहार के झगड़े में तो सब पड़े हैं। जय सात छास मैंने व्यवहार, मक्खन निकाल लिया बाकी रही छास। ऐसे धर्मों में मक्खन है वो तो निश्चय है, व्यवहार है वो तो छास है, और उसका झगड़ा होता है, उनमें कम मिला ज़्यादा मिला, कम मिला जा, ये छास अच्छी है, ये छास पतली है, ये मोटी है, वो छोटी है, ये मीठी है, खाटी है, फीकी है, ये छास का झगड़ा छास में रहने दो। मक्खन था सो बिरला खाया, वो अब्दू दशा में बोलते हैं। तो ऐसे जैन दर्शन की जो सर्वोच्चता है वो अपने आप अपने स्थान में सिद्ध ही है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध ही है। इन तीन दोषों से रहित महाअतिशय से प्रतापी महाप्रतापी तीर्थंकर देव ने मोक्ष के कारण रूप जिस धर्म का उपदेश दिया है, उस धर्म को चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो किसी भी संप्रदाय का, परंतु वह एक पद्धति से होना चाहिए, वह बात निशंक है, उसमें दो पद्धति नहीं चले। अभी जो जैन धर्म के संप्रदाय अलग अलग है, वो बात गड़बड़ वाली ही है। पद्धति एक ही होनी चाहिए, दो पद्धति होनी नहीं चाहिए। 21 साल की उम्र में वो लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं कि इन तीन दोषों से रहित राग द्वेष और मोह रहित संपूर्ण हो गए महाअतिशय से प्रतापी, बहुत प्रतापी है। तीर्थंकर का प्रताप वो तो जिसने देखा है वही समझते हैं। मोक्ष के कारण रूप जिस धर्म का उपदेश दिया है, उस धर्म को चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो, जैनी हो अजैनी हो कुछ भी हो, परंतु वह एक पद्धति से होना चाहिए, दो पद्धति उसमें चले नहीं, एक ही पद्धति से होना चाहिए, यह बात निशंक है। उसमें कोई शंका करने जैसी बात नहीं है। ऐसा कह करके अलग अलग पद्धति है, उसका निषेध किया है। विश्व में दो जैन हो ही नहीं सकते, एक ही जैन हो सकता है और एक ही प्रकार का हो सकता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि तीर्थंकर देव ने जो बात कही है उससे अलग बात करने का किसी को अधिकार है ही नहीं, अलग पद्धति शुरू करने का किसी को अधिकार है ही नहीं, फिर भी कोई करता है तो वो तीर्थंकर देव का विरोधी है। किसका विरोधी है? जिनेन्द्र परमात्मा का विरोध करके वो बात करता है, वो बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक रखें, फिर आगे लेंगे।